नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली कार विस्फोट में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए आज एक प्रस्ताव पारित किया और मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने हिंसा के इस संवेदनहीन कृत्य के पीड़ितों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की देश की नीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रिमंडल ने अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और लोगों की समय पर और समन्वित प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी ने विपरीत परिस्थितियों में साहस और करुणा के साथ काम किया। मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया कि घटना की जांच अत्यंत तत्परता के साथ की जाए, जिससे अपराधियों, उनके सहयोगियों और षड्यंत्रकारियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल गए और सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री भूटान की 2 दिन यात्रा संपन्न होने के बाद हवाई अड्डे से सीधे अस्पताल पहुंचे। प्रधानमंत्री ने घायलों से बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस षड्यंत्र में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चेस्ट क्लिनिक स्थापित करने का आह्वान किया गया है। ये क्लिनिक वायु प्रदूषण के दौरान प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे खुले रहने की सलाह दी गई है। परामर्श में लोगों को सड़कों और भारी यातायात वाले क्षेत्रों, उद्योगों के आसपास के क्षेत्रों और निर्माण तथा विध्वंस स्थलों जैसे उच्च वायु प्रदूषण वाले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। भारत और बोत्सवाना ने स्वास्थ्य तथा औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, खनन, कौशल विकास और डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
We reaffirm the deep and friendly ties between India and Botswana, founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, and digital technology.
राष्ट्रपति मुर्मू ने बोत्सवाना को एंटी रेट्रोवायरल ARV दवाइयों भेजने के भारत के निर्णय की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन EPM को मंजूरी दे दी है। इस प्रमुख पहल की घोषणा इस वर्ष के बजट में भारत के निर्यात को विशेष रूप से MSME के पहली बार के निर्यातकों और श्रम क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए की गई थी। नई दिल्ली में बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित खाका उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्री ने आज कनाडा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस आयोजन की मेजबानी के लिए सुश्री आनंद को बधाई दी और नए रोडमैप 2025 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत इस द्विपक्षीय साझेदारी के और अधिक सुदृढ़ होने की आशा करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कनाडा में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्री रूबियो के साथ यूक्रेन संघर्ष, पश्चिमी एशिया की स्थिति और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विचार विमर्श किया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दोनों प्रमुख गठबंधन NDA और महागठबंधन ने निर्णायक बहुमत हासिल करने का दावा किया है। इस बीच EVM और VVPAT को कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न जिला मुख्यालयों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। पूरी प्रक्रिया पर CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा, लगभग 67% मतदान दर्ज किया गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।